स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। तारीख 23 जून और दिन गुरुवार। ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन में रहेगा या नहीं, इस पर आज होगा जनमत संग्रह। कठोर बंदूक कानून के लिए अमरीकी सदन में सांसदों का धरना।
The time for silence and patience is long gone. We are calling on the leadership of the...
राजन के बाद सुब्रमण्यम स्वामी के निशाने पर अब हैं मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन।
बीजेपी में एक वर्ग उन्हें सीरियसली ले या ना ले, मैं ये देख रही हूँ कई सालों से आरएसएस सुब्रमण्यम स्वामी को बहुत गंभीरता से लेती है।
यूपी के कैराना से एक खास रिपोर्ट, अखबारों की समीक्षा भी, लेकिन उन सबसे पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। ब्रिटेन यूरोपीय संघ में रहे या बाहर जाए, इस मुद्दे पर आज ब्रिटेन में ऐतिहासिक जनमत संग्रह होगा। मतदान केंद्र सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। लगभग 4,64,99,537 लोग मतदान करने के योग्य हैं। ये किसी ब्रितानी चुनाव के लिए रिकॉर्ड संख्या है। ब्रिटेन के इतिहास में ये अब तक का तीसरा राष्ट्रीय जनमत संग्रह है। अमेरिका में कठोर बंदूक नियमों के लिए डेमोक्रेट पार्टी के सांसद संसद के निचले सदन में ही धरने पर बैठ गए हैं। सांसदों की मांग है कि सदन अगले सप्ताह अवकाश पर न जाए और बंदूक नियंत्रण को लेकर लाए जाने वाले विधेयक पर मतदान कराया जाए। फ्लोरिडा के ऑरलैंडो में एक समलैंगिक क्लब पर गोलीबारी में 49 लोगों की मौत के बाद अमरीका में बंदूक खरीदारी को कठोर नियम लागू कराए जाने की मांग तेज हो गई है। एक सांसद जॉन लुइस ने सदन में कहा कि हजारों लोगों की जानें बंदूक हिंसा में जा चुकी हैं और सदन ने कुछ भी नहीं किया है। डेमोक्रेट पार्टी के सांसद जॉरेड हफमैन ने कहा कि अध्यक्ष रियान बाहर आएं और डेमोक्रेट सांसदों के साथ मिलकर काम करें। उन्होंने कहा,
स्पीकर रायन, कम आउट ऑफ योर ऑफिस, कम एंड टॉक टू अस।
अध्यक्ष रायन, अपने दफ्तर से बाहर निकलिए और हमसे बात कीजिए। अमरीकी लोगों की आवाज़ को सुनिए, उस दक्षिणपंथी मानसिक असंतुलित विचारधाराओं और विशेष हितों की गूंज वाले चैम्बर से बाहर निकलो और अमरीकी लोगों की आवाज़ सुनो। अगर विधेयक नहीं और अगर मतदान नहीं हुआ तो सदन का अवकाश भी नहीं होगा। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने बुधवार को किए गए मिसाइल परीक्षणों के बारे में कहा है कि ये प्रशांत क्षेत्र में अमरीका के हितों पर हमला करने की उत्तर कोरिया की क्षमता का सबूत है। सरकारी मीडिया के मुताबिक मध्य दूरी के इन मिसाइलों का परीक्षण किम जोंग उन की निगरानी में ही किया गया है। अमरीकी और दक्षिण कोरियाई विशेषज्ञों का कहना है कि एक मिसाइल नाकामयाब रही जबकि दूसरी ने सैकड़ों किलोमीटर की दूरी तय की। उत्तर कोरिया के नेता ने इसे अहम कामयाबी बताते हुए कहा कि इससे देश की परमाणु हमला करने की क्षमता बहुत हद तक बढ़ गई है। उत्तर कोरिया के ये मिसाइल परीक्षण संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों का उल्लंघन है। एक नए अध्ययन के मुताबिक लातिन अमेरिका में गर्भपात कराने वाली महिलाओं की संख्या तेजी से बढ़ी है। ये जीका वायरस के कारण अजन्मे बच्चों के लिए जारी स्वास्थ्य चेतावनियों के बाद हुआ है। शोधकर्ताओं के मुताबिक पिछले साल जीका वायरस को लेकर जारी पहली चेतावनी के बाद से ब्राजील और इक्वाडोर में गर्भपात गोलियों की खरीद की ऑनलाइन मांग दोगुनी हो गई है। लातिन अमेरिका के बड़े हिस्से में गर्भपात गैरकानूनी है या इसे लेकर व्यापक प्रतिबंध हैं। कोलंबिया की सरकार और विद्रोही लातिन अमेरिका के सबसे लंबे हिंसक संघर्ष को खत्म करने के लिए समझौते पर पहुंच गए हैं। बीबीसी समाचार।
एक बार फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। आज है जून की 23 तारीख और दिन गुरुवार। ये तारीख और ये दिन दोनों ही ब्रिटेन के इतिहास में शायद बहुत ही ऐतिहासिक होने जा रहे हैं, क्योंकि अभी से थोड़ी देर पहले, अभी जबकि ब्रिटेन में लगभग 2 बज रहे हैं और भारत में इस वक्त 6:33 हो रहे हैं, अभी से तकरीबन 5 घंटों के बाद, यानी वहाँ के सुबह 7 बजे और भारत के 11:30 के वक्त, वहाँ से एक जनमत संग्रह की शुरुआत होगी और वजह होगी कि क्या ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बना रहेगा या नहीं। 4,60,00,000 से भी ज़्यादा मतदाता इस बात का फैसला करेंगे कि आखिरकार ब्रिटेन का भविष्य क्या होगा। एक तरफ वो गुट है जो यूरोपियन यूनियन में बने रहना चाहता है, जिन्हें रिमेन कहा जा रहा है, तो दूसरी तरफ वे लोग हैं जो यूनियन से अलग होने की वकालत कर रहे हैं। इस गुट को लीव यानी छोड़ देने का लीव कहा जा रहा है। इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे साथी सलमान रावी।
ब्रिटेन यूरोपीय संघ में रहे या बाहर जाए, इस मुद्दे पर आज ब्रिटेन में ऐतिहासिक जनमत संग्रह हो रहा है। मतदान केंद्र सुबह 7 से रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। लगभग 4,64,99,537 लोग मतदान करने के योग्य हैं। ये किसी ब्रितानी चुनाव के लिए रिकॉर्ड संख्या है। ब्रिटेन के इतिहास में ये अब तक का तीसरा राष्ट्रीय जनमत संग्रह है। यूरोपीय संघ के साथ रहने और अलग होने पर जोर दे रहे अभियान बीते 4 माह से प्रचार में जुटे थे। मतदान के दौरान बीबीसी जनमत संग्रह की सीमित रिपोर्टिंग करेगा, लेकिन नतीजे बीबीसी के विभिन्न माध्यमों पर लाइव होंगे। जनमत संग्रह में पूछा गया सवाल है, क्या ब्रिटेन को यूरोपीय संघ का सदस्य रहना चाहिए या यूरोपीय संघ को छोड़ देना चाहिए। जिसे भी डाले गए मतों में से आधे से ज्यादा मत मिल जाएंगे उसे ही जीता हुआ मान लिया जाएगा। गुरुवार रात 10 बजे मतदान बंद होने के बाद बैलेट बॉक्सों को 382 स्थानीय गिनती केंद्रों पर ले जाया जाएगा। इसमें इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स के सभी 380 स्थानीय निकाय और उत्तरी आयरलैंड और गिब्राल्टर का एक एक केंद्र शामिल है। मतदान के बाद रात भर स्थानीय केंद्रों से नतीजे आते रहेंगे। मुख्य गिनती अधिकारी मैनचेस्टर टाउन हॉल से अंतिम नतीजों का ऐलान करेंगे। चुनाव आयोग का अनुमान है कि शुक्रवार दोपहर तक अंतिम नतीजे मिल सकते हैं।
ये थे सलमान रावी। ब्रिटेन के इतिहास में एक अहम दिन। और अब ब्रिटेन से चलते हैं अमेरिका। अमेरिका में कठोर बंदूक कानून की मांग को लेकर अमेरिकी सदन में सांसद धरने पर बैठे हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों की मांग है कि बंदूक खरीदने वालों की पूरी जांच होनी चाहिए और इस बात के भी पर्याप्त उपाय किए जाएं कि कोई संदिग्ध चरमपंथी आसानी से बंदूक नहीं हासिल कर सके। बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्ट का सार सुनिए दिलनवाज पाशा से।
अमेरिका में डेमोक्रेट पार्टी के सांसद कठोर बंदूक कानूनों की मांग को लेकर सदन में ही धरने पर बैठ गए हैं। धरने पर बैठे करीब 100 सांसदों की मांग है कि बंदूक खरीदने वालों की पृष्ठभूमि की व्यापक जांच की जाए और संदिग्ध चरमपंथियों के लिए बिक्री पूरी तरह बंद की जाए। इस महीने फ्लोरिडा के ऑरलैंडो में एक समलैंगिक क्लब में गोलीबारी में 49 लोगों की मौत हो गई थी। डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति बराक ओबामा समेत कई सांसद अमरीका में बंदूक खरीदारी के लिए कठोर नियमों की मांग कर रहे हैं। धरने का नेतृत्व जॉन लुइस कर रहे हैं, जो 60 के दशक के नागरिक अधिकारों के नेता भी रहे हैं। उन्होंने सदन में कहा,
The time for silence and patience is long gone. We are calling on the leadership of the house.
खामोश रहने और सब्र करने का समय बीत गया है। हम सदन के नेतृत्व से आह्वान करते हैं कि वो बंदूक नियंत्रण के लिए विधेयक लाएं और मतदान कराएं। हमें मतदान करने दें। हम यहाँ अपना काम करने आए हैं। अमरीकी लोग अब कुछ कार्रवाई चाहते हैं। क्या हम में इतनी हिम्मत है? क्या हम अमेरिका में बंदूक हिंसा को रोकने की हिम्मत रखते हैं? अब हम इंतजार नहीं कर सकते हैं। अब हम सब्र नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ट्विटर पर जॉन लुइस का बंदूक हिंसा के खिलाफ नेतृत्व करने के लिए धन्यवाद किया है। सांसद रिपब्लिकन पार्टी के प्रस्ताव का समर्थन कर रहे शीर्ष डेमोक्रेट सांसद हैरी रीड के साथ समझौते के लिए भी जोर दे रहे हैं। रीड का कहना है कि वो रिपब्लिकन सांसद सुसान कॉलिंस के उस नए प्रस्ताव का समर्थन करते हैं जिसके तहत उन लोगों को बंदूक बेचने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा जो चरमपंथ निगरानी सूची में शामिल होंगे। अमेरिकी कांग्रेस में इस समय रिपब्लिकन पार्टी का नियंत्रण है। रिपब्लिकन पार्टी ने सदन की कार्यवाही रोकने की मांग कर दी है, जिसके चलते कैमरा बंद कर दिए गए हैं। लेकिन धरने पर बैठे सांसद अपनी बात पहुंचाने के लिए ऑनलाइन आ गए हैं और सदन के भीतर से ही तस्वीरें ट्वीट कर रहे हैं। वहीं एक सांसद पेरिस्कोप ऐप के जरिए लाइव वीडियो भी साझा कर रहे हैं। ऑरलैंडो शूटिंग के बाद बंदूक कानूनों को लेकर 4 प्रस्ताव संसद में गिर चुके हैं, लेकिन अब दोनों पार्टियों में से समर्थन से लाया जा रहा प्रस्ताव गुरुवार को सदन में पेश होगा। रिपब्लिकन पार्टी के सत्र में अवकाश की मांग करने पर प्रदर्शनकारी सांसदों ने 60 के दशक के विरोध गीत गाए और नारा बुलंद किया कि जब तक विधेयक नहीं आएगा कार्यवाही नहीं रुकेगी। सदन के अध्यक्ष और रिपब्लिकन पार्टी के वरिष्ठ नेता पॉल रियान के प्रवक्ता ने ट्वीट किया, जब तक सदस्य नियमों का पालन नहीं करेंगे सदन की कार्यवाही नहीं चल सकती है, इसलिए अध्यक्ष के आह्वान पर सदन अवकाश पर है। सांसद चाहते हैं कि 5 जुलाई को संसद के अवकाश पर जाने से पहले इस मुद्दे पर मतदान हो जाए।
ये थे दिलनवाज पाशा और हम बने रहेंगे अमरीका ही, लेकिन वॉशिंगटन से चलेंगे न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में एक मुस्लिम पुलिस अफसर को इस वजह से निलंबित कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने अपनी दाढ़ी को छोटी करने से इनकार कर दिया था। लेकिन बात वहीं पर ख़त्म नहीं हुई, पुलिस अफसर अदालत पहुंच गए और केंद्रीय अदालत में उन्होंने पुलिस विभाग और न्यूयॉर्क शहर पर इसके खिलाफ केस कर दिया। अदालत से उन्हें थोड़ी वक्ती राहत भी मिल गई। सुनिए न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी की ये रिपोर्ट।
न्यूयॉर्क पुलिस विभाग के एक मुस्लिम पुलिस अफसर मसूद सैयद को मंगलवार को जब उनके बॉस ने दाढ़ी छोटी करने को कहा तो सैयद ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया। वैसे तो न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में काम करने वालों को दाढ़ी रखने की मनाही है, लेकिन विभिन्न धर्मों के मानने वालों के लिए छूट के तौर पर 1 मिलीमीटर तक लंबी दाढ़ी रखने की इजाजत है। लेकिन मसूद सैयद 1 मिलीमीटर के बजाय 1 इंच तक लंबी दाढ़ी रखना चाहते हैं और इसको वो अपनी धार्मिक आज़ादी मानते हैं। अब निलंबित होने के बाद मसूद सैयद ने पुलिस विभाग और न्यूयॉर्क शहर के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया है। बुधवार को अदालत में पेशी के दौरान जज ने पुलिस विभाग को हुक्म दिया कि जब तक मुकदमे का फैसला ना आ जाए तब तक मसूद सैयद की तनख्वाह जारी रखी जाए। मसूद सैयद अदालत के इस फैसले से खुश हैं, लेकिन वो लंबी कानूनी लड़ाई के लिए तैयार दिखते हैं। मैं जज के फैसले से बहुत खुश हूँ, ये एक सही फैसला है और मुझे लगता है कि हम सही तरफ जा रहे हैं, लेकिन अभी आगे एक लंबा कानूनी रास्ता तय करना है। मसूद सैयद कहते हैं कि उन्हें पुलिस विभाग में कई सहयोगियों की हिमायत हासिल है। 32 वर्षीय मसूद सैयद, जो एक वकील भी हैं, पुलिस विभाग में पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं। फिलहाल वो लॉ क्लर्क की हैसियत से काम करते हैं। इससे पहले मसूद सैयद ने 1 मिलीमीटर तक दाढ़ी रखने की इजाज़त विभाग से ले ली थी और उन्हें पिछले साल दिसंबर तक कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन जब उनकी दाढ़ी 1 मिलीमीटर की सीमा से बढ़ गई तो उनको दाढ़ी छोटी करने को कहा गया। उसके बाद से वो पुलिस विभाग से लंबी दाढ़ी रखने की छूट हासिल करने के लिए लगातार कोशिशें करते रहे, लेकिन कामयाबी ना मिली। मसूद सैयद का दावा है कि न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में कम से कम 100 ऐसे पुलिस अफसर मौजूद हैं जिन्हें लंबी दाढ़ी रखने के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मसूद सैयद के वकील जोशुआ मुस्कोविट्स कहते हैं, हमने मुकदमा इसीलिए दायर किया है जिससे दाढ़ी लंबी होने के कारण पुलिस विभाग में परेशानी झेलने वाले सभी अफसरों को राहत मिल सके। वहीं न्यूयॉर्क शहर प्रशासन के वकील का कहना है कि मसूद सैयद की दाढ़ी पुलिस विभाग के नियमों का उल्लंघन करती है, क्योंकि 1 मिलीमीटर की हद इसलिए लागू की गई है जिससे पुलिस कर्मियों को अपनी ड्यूटी के दौरान चेहरे पर गैस मास्क सही तरीके से लगाया जा सके। मसूद सैयद को 30 दिनों के लिए बगैर तनख्वाह के निलंबित किया गया है और अगर वो दाढ़ी छोटी करने से इनकार करते रहेंगे तो उन्हें पुलिस विभाग के कानून के तहत नौकरी से बर्खास्त भी किया जा सकता है। अब अदालत में इस मामले की अगली पेशी 8 जुलाई को होनी है, जिसमें जज ये तय कर सकते हैं कि क्या मसूद सैयद पुलिस विभाग में अपने काम पर लंबी दाढ़ी के साथ वापस आ सकते हैं या नहीं। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
75 वर्षों से आपके साथ
बीबीसी हिंदी रेडियो,
सुनिए अपने मोबाइल पर
और ऑनलाइन भी।
तो एक दफा फिर स्वागत है आपका कार्यक्रम नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। इस वक्त हो चुके हैं 6:42 और 47 सेकंड। ब्रिटेन, यूरोप और अमेरिका, इन सब की बातें तो हो गई, तो अब थोड़ी बहुत बातें भारत की भी हो जाए। भारतीय जनता पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने पहले रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन पर निशाना साधा और अब उन्होंने मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि अरविंद सुब्रमण्यम मोदी सरकार की नीतियों के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन रघुराम राजन के मामले से एकदम उलट वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अरविंद सुब्रमण्यम का खुलकर बचाव किया है। आइए सुनते हैं कि जेटली ने क्या कहा।
Well, the government has full confidence in the chief economic advisor, Mr. Arvind Subramaniam. His advice to the government from
जेटली कह रहे थे कि सरकार को अपने मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम में पूरा भरोसा है और वो सरकार को समय समय पर महत्वपूर्ण सलाह देते रहे हैं। उनके बारे में स्वामी की राय से हम इत्तफाक नहीं रखते हैं। वित्त मंत्री जेटली बातों बातों में ये भी कह गए कि नेताओं को अपनी जबान पर लगाम रखनी चाहिए। बहरहाल सवाल ये उठता रहा है कि स्वामी किसकी शह पर बोलते हैं, क्या उनके निशाने पर जेटली हैं? इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए हमारे साथी संदीप सोनी ने वरिष्ठ पत्रकार राधिका रामासेशन से बात की और पहला सवाल यही पूछा कि आखिर सुब्रमण्यम स्वामी किस शख्सियत के मालिक हैं।
बीजेपी में एक वर्ग उन्हें सीरियसली ले या ना ले, मैं ये देख रही हूँ कई सालों से आरएसएस सुब्रमण्यम स्वामी को बहुत गंभीरता से लेती है। आरएसएस इतनी हद तक जाती है कि वो भूल जाती है कि सन 1999 में यही सुब्रमण्यम स्वामी जी थे जिन्होंने वाजपेयी सरकार को गिराया, जब उन्होंने अपना वो टी पार्टी ऑर्गेनाइज किया जिसमें सोनिया गांधी और जयललिता आए और जयललिता को एक तरह से एनडीए से तोड़ दिया। ये कभी रहते हैं जनसंघ या बीजेपी में, कभी बाहर रहते हैं, इनका वैसे कोई बहुत रिलायबल रिकॉर्ड नहीं रहा। लेकिन आरएसएस की नजरों में ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं जो हार्वर्ड में पढ़े और पढ़ाए हार्वर्ड में, वो पूरी तरह स्वामी जी के पीछे खड़ी है। और मुझे लगता है कि जो स्वामी जी जो भी करते हैं, जो भी कहते हैं, जो भी डिमांड करते हैं, उसमें पूरी तरह आरएसएस का बैकिंग है। और बीजेपी भी जानती है कि क्योंकि आरएसएस उनके पीछे खड़ी है पूरी तरह, बीजेपी को भी कुछ हद तक स्वामी जी के बातों को मानना पड़ेगा।
तो इसको यूं कह सकते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शय मिली हुई है।
बिल्कुल, जब उन्होंने अरविंद सुब्रमण्यम जी की बात उठाई और अरुण जेटली जी ने अरविंद सुब्रमण्यम को पूरी तरह उन्होंने सपोर्ट किया, तुरंत अश्विनी महाजन जी जो जॉइंट नेशनल कन्वीनर हैं स्वदेशी जागरण मंच के, उन्होंने तुरंत ट्वीट किया अरविंद सुब्रमण्यम को जाना ही चाहिए क्योंकि उन्होंने एफटीए पे जो सन 2013 में जो स्टैंड लिया था वो सरकार के विपरीत था। और अभी भी हाल में ही उन्होंने कहा कि इंडिया की जो ट्रेड पॉलिसी है, ट्रेड व्यापारिक नीति है, वो एक तरह से कंफ्यूज, और उस समय निर्मला सीतारामन जी को बयान देना पड़ा कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमें मालूम है कि कौन सा रास्ता हम अपना रहे हैं। तो ये सब जो उदाहरण है जो हमारे और आपके दिमाग से शायद चली भी गई होगी, अभी ये स्वदेशी वाले उठा रहे हैं। तो भले ही जेटली जी ने कहा होगा कि नहीं, हम अरविंद सुब्रमण्यम की जो कॉन्ट्रीब्यूशन है हम उसको बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, लेकिन आप देखिए ऐसे आवाज उठने लगेगी परिवार में जो ये कह रही है कि जो भी स्वामी जी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और देश के भले के लिए ही कह रहे हैं। कि ये नेशनलिज्म कार्ड जो है वो एक बहुत बड़ा पावरफुल कार्ड है आरएसएस के हाथ में, ये सरकार को थोड़ा सीधे रास्ते में रखने के लिए। तो जरूर ये नेशनलिज्म कार्ड ही खेल रही है आरएसएस इस वक्त।
कहीं कहीं सुनने में आता है कुछ हलकों में, राजनीतिक हलकों में, कि अप्रत्यक्ष रूप से अरुण जेटली निशाने पर हैं। क्या कुछ ऐसा अंदरूनी उठापटक आपको समझ में आती है?
जो मेरी बात हुई बीजेपी लोगों से, वो कह रहे हैं कि एक बड़ा प्रभावशाली वर्ग है बीजेपी में जो स्वामी जी का इस्तेमाल भी करना चाहेगा अपने अंदरूनी स्कोर्स को सेटल करने को। हो सकता है कि बीजेपी जैसे इतनी बड़ी पार्टी है उसमें जेटली जी के चाहने भी वाले भी होंगे, उनके ना चाहने वाले भी होंगे, हो सकता है कोई सेटल करना चाहेगा स्कोर। स्वामी जी तो बार बार संकेत दिया है कि वो जेटली जी के खिलाफ है क्योंकि उनका ये मानना है, किसी तरह मैं कह रही हूँ कि राइटली और रॉन्गली ये मानते हैं कि इतने दिन उनकी एंट्री बीजेपी में जेटली जी ने ही अपोज किया था, उनकी व्यक्तिगत खुंदस भी है जेटली जी के खिलाफ।
ये थी वरिष्ठ पत्रकार राधिका रामा सेशन। और अब चलते हैं उत्तर प्रदेश। पिछले दिनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शहर कैराना से हिंदुओं के कथित पलायन की खबर से शहर और इसके आसपास तनाव का माहौल बना हुआ है। लेकिन कैराना के अल्पसंख्यक हिंदू और बहुसंख्यक मुस्लिम समुदायों ने मिलकर शांति बनाए रखी है। उनका मानना है कि पलायन की खबर गलत है और राज्य में अगले साल विधानसभा के कारण ये सब किया जा रहा है। बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद उस इलाके के दौरे पर हैं और वहां से उन्होंने ये रिपोर्ट भेजी है।
मैं इस समय कैराना शहर के बिल्कुल बीच में एक बाज़ार है उससे होकर मोटरसाइकिल में किसी लोकल आदमी के साथ बैठकर सवार होकर गुजर रहा हूँ। यहाँ से बड़ी पतली पतली गलियाँ यहाँ पर हैं, ढेर सारी दुकानें हैं और अक्सर जो दुकानें हैं यहाँ पर कम से कम इस गली में वो मुसलमानों के हैं, लेकिन कई हिंदू दुकान भी यहाँ नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल मामूल के मुताबिक सामान्य ज़िंदगी लोग गुजार रहे हैं और किसी तरह का कोई भय का माहौल नहीं है या टेंशन नहीं है या किसी को किसी तरह की चिंता नहीं है। मैं बीबीसी लंदन से हिंदी सर्विस में हूँ। तो आपका नाम बता दीजिए।
मेरा नाम राजेश कुमार है।
राजेश कुमार जी, आप इसी कैराना के ही रहने वाले?
यही रहने वाले,
यही पैदा हुआ।
हाँ जी।
माहौल कैसा लग रहा है?
यहाँ का माहौल तो ठीक है, कुछ
नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं।
हाँ देखो यहाँ पर हम रहते हैं, हैं मुसलमानों में कुछ नहीं होती,
ये एरिया मुस्लिम एरिया,
मुस्लिम एरिया, हमें कोई दिक्कत नहीं।
तो आपकी दुकान कब से है?
हमारी दुकान तो यहाँ 50 साल से है।
अच्छा,
हम सब्जी का आड़ती हैं, सब्जी मंडी में आड़त है हमारी।
अच्छा,
हाँ।
और ये जो बहुत सारी दुकानें जो दिख रही है मुझे, कपड़ों की दुकानें हैं, चप्पलों की दुकानें हैं, सब्जियों की भी दुकानें हैं, तो ये सब हिंदू दुकानदार हैं?
नहीं, हिंदू हैं चार चार पांच है बस,
कोई यहाँ पे शांति।
हम तो अपने घर से ज्यादा सेफ्टी है हमने,
यहाँ पर सेफ्टी मुस्लिम एरिया में,
हमें घर सेफ्टी नहीं, हमें यहाँ पर सेफ्टी है।
अच्छा, तो फिर लोग क्यों ऐसा कह रहे हैं कि पलायन हो रहा है?
पलायन तो ऐसे है, और अपना रोजगार है, अपना बाहर आदमी रोजगार करे, वो अपना सारी फैमिली को घुमा लेके चले जाए। हम तो ये कहेंगे तो हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं, हमें कोई किसी कोई दिक्कत नहीं है।
सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए।
अरविंद गर्ग है जी।
अरविंद गर्ग।
हाँ।
गर्ग साहब, ये बताइए कि ये दुकान जो आपकी है ये कितनी पुरानी है?
कम से कम 50 साल पुरानी है।
अच्छा, हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम नहीं,
नहीं है? वो नहीं है, वो नहीं है।
करते हैं आपको कैसा
लगा? हमें कोई दिक्कत नहीं, 1% सुरक्षित है।
कैराना से हिंदू पलायन की खबर से इलाके में माहौल तनावपूर्ण जरूर हो गया, लेकिन ये हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दरार पैदा करने में कामयाब नहीं रही। मोहम्मद अली यहाँ के एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनके अनुसार ये एक साजिश थी जो कामयाब नहीं रही। वो ये भी कहते हैं कि पलायन अगर हुआ भी है तो वो आर्थिक कारणों से हुआ है, और मुसलमानों और हिंदुओं दोनों का पलायन हुआ है।
जी जी, हिंदू मुस्लिम सबने पलायन किया है, एक खाली हिंदूज का पलायन नहीं है। यहाँ से अगर 300 की लिस्ट, माननीय सांसद जी 345 की लिस्ट दे रहे हैं, मैं 1000 हिंदूज की लिस्ट दे दूंगा जो 20-30 साल के अरसे में यहाँ से चले गए, और 3-4 हज़ार मुस्लिम्स की भी दे दूंगा जो यहाँ से चले गए सिर्फ बिजनेस के लिए, या उनको अच्छा एजुकेशन स्कोप नहीं मिला, बच्चों को बाहर पढ़ाना पड़ा तो बच्चों की बाहर नौकरी लग गई, वो चले गए।
मोहम्मद अली उस शांति मार्च में शामिल हुए जो पिछले हफ्ते कैराना में निकाला गया था, दुनिया वालों को ये दिखाने के लिए कि यहाँ के मुसलमान और हिंदू एकजुट हैं और सांप्रदायिक दंगों के खिलाफ हैं। हिंदुओं के पलायन की पहली लिस्ट कैराना से आए और दूसरी बगल के शहर कांगला से। वहाँ के नगर पालिका के अध्यक्ष हाजी वाजिद कहते हैं ये लिस्ट सरासर गलत है, और ये कि अगर पलायन किसी का हुआ है तो वो मुसलमानों का 2013 में मुजफ्फरनगर के जाटों के गाँव से जब दंगे हुए थे।
ऐसा नहीं है कि मुस्लिमों से डर के पलायन किया, मुस्लिमों से डर कहाँ से होगा? अभी आपके सामने 2013 में मुजफ्फरनगर कांड हुआ। अगर हम ठीक है, यहाँ बहुसंख्यक में कैराना में और कांगला में मुस्लिम हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि गुंडे हैं, यह खाली चुनावी प्रोपगंडा है और कुछ नहीं है। पलायन उस चीज़ को कहा जाता है पलायन करके कोई किसी शरणार्थी शिविर में रह रहा, एक बार। दूसरी बात, जो आदमी पलायन किया है अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए या अपने किसी अच्छे रोजगार के लिए।
कैराना ने ये दिखा दिया है कि हिंदू मुस्लिम एकता संभव है। जब मुजफ्फराबाद में 2013 में यहाँ दंगे हुए थे, उस समय भी कैराना में शांति थी, और इसी शांति की परंपरा को यहाँ के लोग थामे हुए हैं। जुबैर अहमद, BBC कैराना।
अब वक्त हो चला अखबारों की समीक्षा का, और हमारे साथी सलमान रावी अखबारों के साथ मौजूद हैं। सलमान, बताएं क्या कहते हैं आपके अखबार?
शुक्रिया इकबाल साहब। और आज जैसा कि बहुत आपने भी समाचार में अभी पढ़ा कि ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन में रहे या नहीं, ये मुद्दा भी काफ़ी छाया हुआ है अखबारों में। सुब्रमण्यम स्वामी का अरविंद स्वामी पर जो वार था वो छाया हुआ है, और मेरे साथ मेरे हाथ में अंग्रेज़ी अखबार भी हैं, हिंदी अखबार भी हैं। किससे शुरुआत करूँ इकबाल साहब, बताइए?
हिंदी से।
हिंदी अखबारों से तो ये लीजिए, नवभारत टाइम्स की पहली हेडलाइन है हे स्वामी, और ये हे स्वामी में दो स्वामियों का जिक्र है इसमें। एक स्वामी है सुब्रमण्यम स्वामी, और अखबार लिखता है नवभारत टाइम्स के एक स्वामी ने रघुराम राजन के बाद अब मुख्य आर्थिक सलाहकार को निशाने पर लिया, तो दूसरे स्वामी ने बहुजन समाज पार्टी छोड़ने का ऐलान करते हुए मायावती पर लगाए गंभीर आरोप।
यानी स्वामी प्रसाद मौर्य।
जी बिल्कुल। तो ये स्वामी को इस तरह से इन्होंने जो है,
हम अपने श्रोताओं को बता दें कि हम स्वामी प्रसाद मौर्य के BSP छोड़ने पर अगले कार्यक्रम में विशेष बातचीत करेंगे।
उसी के साथ साथ ये दैनिक जागरण में है कि सुब्रमण्यम पर चूक गए स्वामी, तो ये बड़ा कटाक्ष भरी आज जो है हेडलाइंस हैं हिंदी अखबारों की।
और अंग्रेजी,
और अंग्रेजी अखबार भी उसी तरह से, इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है उसी कटाक्ष से लिखा है कि सुब्रमण्यम ओवर स्वामी दिस टाइम, यानी कि इस बार अरविंद सुब्रमण्यम जो है वो भारी पड़े सुब्रमण्यम स्वामी पर,
और पूरी सरकार उनके साथ फिलहाल खड़ी दिखती है
बिल्कुल। और हिंदू अखबार में खबर है जयशंकर जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनके सियोल जाने की, और वहां पर जो एनएसजी की मेंबरशिप है उसके लिए जो वो जोर लगा रहे हैं वहां जाकर भारत को उसमें शामिल किया जाए, उस खबर को प्रमुखता मिली है। और साथ में ये तो खबर है ही कि जेटली ने किस तरह से बचाव किया मुख्य आर्थिक सलाहकार का, और ये उन्होंने जो सुब्रमण्यम स्वामी को हिदायत भी दी है और ये भी काफ़ी प्रमुखता से छापा गया है। लेकिन इकबाल साहब, अगर किसी का नाम मिलता जुलता हो किसी से तो कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मैं तो ये शुक्र मना रहा हूँ कि मेरे पास कुछ इस तरह के मेल नहीं आए, सलमान खान का जो मामला हुआ कि सलमान रावी हूँ मैं। लेकिन ये खबर जो इंडियन एक्सप्रेस में आई है ये बड़ी मज़ेदार खबर है। ये है कि एक अरब स्प्रिंग का आपको याद होगा कि काफ़ी
अरब में जो क्रांति हुई
जी, तो इयाद अल बगदादी उसके जो नायक थे जिन्होंने फिर बाद में एजाइलम ले लिया टर्की में है, उन्होंने एक ट्वीट किया है और ये कहा है कि साहब गलत बगदादी को मैसेजेस आ रहे हैं, लोग भेज रहे हैं कि साहब हम आईएसआईएस से जुड़ना चाहते हैं। अब वो बेचारे परेशान होकर उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि इफ आई गेट मेल्स फ्रॉम इंडिया बेस्ड अकाउंट्स आस्किंग हाउ टू जॉइन आईएसआईएस, हु इन इंडिया डू आई रिपोर्ट देम। अब वो बेचारे परेशान है कि इनकी मैं किसको जाके जो है शिकायत करूं। तो ये इंडियन एक्सप्रेस ने ये खबर लिखा है।
यकीनन बहुत शुक्रिया सलमान आपका अखबारों की समीक्षा का। और अब खेल समाचार। जिम्बाब्वे में 2020 सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में जिम्बाब्वे को कल भारत ने 3 रनों से मात देकर सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया। मैच पर पूरी जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रजत चान्ना ने पूर्व भारतीय खिलाड़ी निखिल चोपड़ा से बात की।
बाल बाल बची भारतीय टीम, क्योंकि जिस तरीके से पहले बल्लेबाजी की ज्यादा अधिक रन बना नहीं पाए। जितना छोटा मुकाबला होता है एक कमजोर टीम को उतना ही मौका मिलता है मैच में बने रहने का। अगर एक टीम थोड़ी बहुत गलती करती है तो उस गलती से वापसी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और जिम्बाब्वे के पास एक मौका था लेकिन उन्होंने अंत में गंवा दिया।
क्या कहेंगे आपकी आखिर ओवर में 21 रन की जरूरत थी लेकिन जिम्बाब्वे ने वापसी की और कहीं ना कहीं धोनी पे डर बनता दिखा।
धोनी पे डर से ज्यादा मैं मानता हूँ कि जो मौका था जिस तरीके से शुरुआत में चौके लगे, अगर यही जिम्बाब्वे की टीम थोड़ा सा और अनुभव मिले उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मैचेस अधिक से अधिक खेले तो अब मैं मानता हूँ कि ये गलतियां दोहराई नहीं जाएंगी। ज्यादा कंपेटिटिव क्रिकेट खेलती नहीं जिम्बाब्वे, मेरे ख्याल में जीत उनके लिए एक आदत जो बनाना चाहते थे वो बन नहीं पाती, और मुश्किल दौरे से निकल के मैच किस तरीके से बना के जीतते हैं, मैच बना तो लिया लेकिन वो फाइनल ब्लो नहीं कर पाई। तो मैं मानता हूँ जितनी ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलेगी जिम्बाब्वे उतनी बेहतर टीम बनती चली जाएगी।
टीम को कुछ ना कुछ सीखने को मिला और युवाओं के लिए एक अच्छा टूर रहा है।
देखिए जिम्बाब्वे का दौरा एक हमेशा युवा पीढ़ी के लिए अपने आप को जमाने के लिए बैट्समैन है या गेंदबाज है एक तरीके से उनको अवसर होता है अपना टैलेंट दिखाने के लिए। तो मैं मानता हूँ कि भारतीय युवा पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा एक मौका था जिन्होंने बढ़िया प्रदर्शन किया।
और बात की जाए धोनी की तो कप्तान धोनी के लिए अब काफी लंबा समय है एक रेस का। सिर्फ लोकेश राहुल ही है जो इस टीम में से वेस्टइंडीज जा रहे हैं, बाकी सब घर। तो ऐसे में धोनी के लिए कितनी मुश्किलात आगे अपने आप को बरकरार रखने के लिए?
मुश्किलें नहीं, मैं मानता हूँ कि बहुत जरूरी है क्रिकेट के साथ टच में रहें, और मैं मानता हूँ वो टच में रहेंगे भी क्योंकि कंपेटिटिव क्रिकेट अब काफी समय तक नहीं है, पर जहाँ भी जब भी उनको मौका मिले मैचेस खेलने का उनको मैचेस खेलना बहुत जरूरी है। और मैं मानता हूँ कि कम से कम मैचेस खेलना ही नहीं ऊपर बैटिंग करें, और जो काफी समय से महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से शतक नहीं लगा या उन्होंने 50-60 रन नहीं काफी समय से बनाए तो एक उस तरीके के लय में वापस आना बहुत जरूरी है।
ये थे निखिल चोपड़ा। और चलते चलते एक बार सुन लेते हैं प्रमुख समाचार।
ब्रिटेन यूरोपीय संघ में रहे या बाहर जाए, इस मुद्दे पर आज ब्रिटेन में ऐतिहासिक जनमत संग्रह होगा। अमेरिका के में कठोर बंदूक नियमों के लिए डेमोक्रेट पार्टी के सांसद संसद के निचले सदन में ही धरने पर बैठ गए हैं। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने बुधवार को किए गए मिसाइल परीक्षणों के बारे में कहा है कि ये प्रशांत क्षेत्र में अमरीका के हितों पर हमला करने की उत्तर कोरिया की क्षमता का सबूत है। एक नए अध्ययन के मुताबिक लातिन अमेरिका में गर्भपात कराने वाली महिलाओं की संख्या तेजी से बढ़ी है। कोलंबिया की सरकार और फाक विद्रोही लातिन अमेरिका के सबसे लंबे हिंसक संघर्ष के खात्मे के लिए द्विपक्षीय समझौते पर पहुंच गए हैं। कोलंबिया में बीते 5 दशकों से हिंसक संघर्ष जारी है जिसमें 2 लाख से अधिक लोग मारे गए हैं और 70 लाख से अधिक बेघर हुए हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने देश के सबसे चर्चित गायकों में से एक अमजद साबरी की हत्या की निंदा की है। बीबीसी समाचार।
तो नमस्कार, भारत की ये सभा यहीं समाप्त होती है। आज स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाली अजीत सारथी ने। आपसे अगली मुलाकात होगी अभी से ठीक एक घंटे बाद यानी 8 बजे कार्यक्रम विश्व भारती में। लेकिन पल पल बदलती खबरों के लिए आप 2400 घंटे आ सकते हैं हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। और अब इकबाल अहमद को अपने तमाम साथियों के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।